हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 27, 28 एंड 29। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवदीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद सातवां अध्याय, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक नंबर 27। भगवान श्री कृष्ण के मुखाविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। श्री भगवान वाच विद्धिदं द्रोण पुत्रस्य ब्राह्मस्त्रं प्रदर्शितं, नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। विद्धिदं द्रोणपुत्रस्य राममस्तं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारम् प्राणबाध उपस्थिते विद्धिदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारम् प्राणबाध उपस्थिते विद्धिदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारम् प्राणबाध उपस्थिते विद्धिदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारम् प्राणबाध उपस्थिते। शब्द का अर्थ, श्री भगवान उवाच, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य, वेत्थे अर्थात जानो, मुझसे जानो, इदं यह द्रोणपुत्रस्य, द्रोणपुत्र का ब्रह्ममस्त्रम् अर्थात ब्रह्म नाभिकीय अस्त्र का मंत्र, प्रदर्शितं प्रदर्शित न नहीं एव भी असौ वह वेद यह जानो, संहारम लौटाना, प्राण बाधे जीवन का विलोप, उपस्थिते उपस्थिति होने पर। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है, उसने ब्रह्मास्त्र का मंत्र फेंका है और वह यह नहीं जानता कि उसे कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र आधुनिक परमाणु हथियार की भांति है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु हथियार का मतलब होता है जैसे आप अभी एटम बम वगैरह चलाते हैं ना, ऐसे ब्रह्मास्त्र श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आधुनिक परमाणु हथियार की भांति, यानी एटम बम की वजह से, एटम बम की तरह ही है। और एटम बम जो है वो एटमी तवानाई जो होती है उससे ही उसको ऊर्जा मिलती है, और परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता यानी प्रलय पर आधारित है। यानी ये जो एटम की जो रेज है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा आग भड़का देना, जैसे पूरा प्रलय जैसा हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है। और ब्रह्मास्त्र जो होता है वो भी उसी तरह से इसी तरह चलता है। यह परमाणु विकिरणों की भांति असह्य ताप उत्पन्न करता है, बहुत ज्यादा। जब एटम बम चलता है तो भी इतना ज्यादा आतिश, वो आग निकलती है और उसमें से इतना प्रलय जैसी बहुत तपिश निकलती है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी फर्क बताते हैं कि जो ये एटम बम होता है वो क्या है, स्थूल है, यानी कि वो एक बस एटमी तवानाई से बना हुआ एक एटम बम है। लेकिन ब्रह्मास्त्र क्या है, वो सूक्ष्म है, दिखने में तो क्या लगेगा, एक अस्त्र ही होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज डाली गई है जिससे कि वो प्रलय करेगा या फिर भड़केगा, उसके अंदर कुछ भी डाला नहीं गया, बल्कि क्या किया गया, सिर्फ मंत्र उच्चारण किया गया। तो यहाँ पर बता रहे श्रील प्रभुपाद जी, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है, यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है। और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भौतिक भी है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन इसका संबंध आध्यात्मिक विधि से होता है जो और भी सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता रहता था कि अस्त्र को किस प्रकार से छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार से वापस लाया जाए। यह पूर्ण ज्ञान था, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोण पुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार से उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को आया देखकर भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उससे ऐसी त्रुटि नहीं करनी थी और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे भगवान द्वारा दंडित होना था। प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण पुत्र द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और अर्जुन इसको देखकर समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन ने कहा, देव देव न वेत्यहम, मैं जानता ही नहीं हूँ कि ये क्या है। पता नहीं कौन सी भड़कती हुई आग मेरी ओर आ रही है। ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, कैसा तेज है कृष्ण? तो ये सुनकर जब कृष्ण ने देखा अर्जुन इतना ज्यादा व्याकुल हो गया है, तो कृष्ण कहते हैं, वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्ममस्त्रं प्रदर्शितं। मुझसे जानो, मैं बताता हूँ क्या है। ये वास्तव में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ये जो अग्नि है वो कोई भड़कती हुई अग्नि या कोई प्रलय नहीं है, बल्कि ये तो वह ब्रह्मास्त्र है जो कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने चलाया। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र है वो भी होता तो एटम बम की तरह ही है, जैसे न्यूक्लियर बम होते हैं, लेकिन इसके अंदर और उसके अंदर एक विचित्र डिफरेंस है। वो क्या है कि न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं उसके अंदर ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रलय कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र तो एक साधारण सा अस्त्र होता है। देखने में तो वो एक साधारण एरो जिस तरह होते हैं ना, ऐसा ही होता है, लेकिन उसको कैसे किया जाता है, अभिभूत किया जाता है मंत्रों के द्वारा। ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है, ये भौतिक भी विज्ञान है, लेकिन फिर भी क्योंकि मंत्रों के द्वारा है तो ये भौतिक हुआ ना, लेकिन फिर भी आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, जो साइंसदान है, वो इसको नहीं जानते। ये विधि उनको नहीं पता है। वो भले ही बड़े बड़े एटम बॉम्ब्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, लेकिन ये तो विधि जो है वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। और ये विधि जो है वो 5000 साल पहले जब युद्ध हो रहा था तब ये विधि यूज की जाती थी। कोई भी उनके जो बाण रखने का होता था ना, तीरकश जिसके अंदर बाण रखे जाते थे, उसके अंदर कुछ भी ऐसा दिखने वाला नहीं था। मतलब ऐसा हथियार जो केवल और केवल चलाने वाले के मंत्र पर निर्भर करता था। केवल वो मंत्र पढ़ता तो वो उसको ब्रह्मास्त्र, साधारण तीर को भी ब्रह्मास्त्र में चेंज कर देता था, कभी कोई दूसरे अस्त्र में चेंज करना। देखने में वो अस्त्र सेम लगता था, लेकिन जब वो मंत्र पढ़ता था तो वो अस्त्र चेंज हो जाता था। उसके अंदर इतना पावर आ जाता था कि वो प्रलय कर सकता था। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात समझने की है, वो है श्रद्धा। कि अर्थात यदि हमें उस मंत्र के ऊपर श्रद्धा है तो वह मंत्र इतना उपयोगी हो सकता है हमारे जीवन में। इतना हमारे प्राणों का संकट है और साधारण एक हथियार है, एक तीर है, वो ब्रह्मास्त्र में बदल जाता है यदि मंत्र को पूरे भरोसे के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जप किया जाता है। और यही श्रद्धा हमको जीवन की बड़े से बड़ी कठिनाई से पार ले जाती है। वास्तव में ये श्रद्धा जो है ना मंत्र के ऊपर, आज हम मंत्र के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते ना, हम समझ रहे हैं कि जप कर रहे हैं बस, ये एक हमें नियम दिया है गुरु ने तो उसको पालन कर रहे हैं, लेकिन उस मंत्र को यदि हम ये नहीं सोचते कि यही वो एकमात्र शब्द है जो कि मेरा कृष्ण के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, इस जो जीवन की सबसे बड़े जो दुख हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको पार करके मुझे कृष्ण तक पहुंचाने का एकमात्र यही सहारा है, तब ये हमारे मन में होना चाहिए। जब ये श्रद्धा है, और ये श्रद्धा हमें मृत्यु के मुख में भी शांति और पूर्णता प्रदान कर सकती है, यदि जीव मर भी रहा हो ना तो भी यदि उस मंत्र के अंदर हमारी श्रद्धा है, बड़ी से बड़ी कठिनाई है, बड़ी से बड़ा प्रॉब्लम है, यदि हमारी उस मंत्र के ऊपर श्रद्धा है तो बिल्कुल निराशा की अवस्था में भी ये श्रद्धा हमें आशा दिला सकती है। इसी श्रद्धा के द्वारा जीवन की हर स्थिति में हम माया के आक्रमण से खुद को बचा सकते हैं। हमें पता होगा कि ये जो मंत्र हम जप कर रहे हैं, उस मंत्र के अंदर अटूट श्रद्धा जो है, वही हमें जीवन के हर एक कदम पर, हर एक प्रॉब्लम में हमें सक्सेस कराती है। यही श्रद्धा हमें आध्यात्मिक आकाश तक पहुंचा लेती है। इस श्रद्धा से बढ़कर और कोई मूल्यवान वस्तु जो है वो हमारे पास नहीं है। भले कितना ही संसार का हमारे पास दूसरा धन हो, या कोई भी संसार की कितनी हम उन्नति प्राप्त करें, कितनी कोई भी बड़ी से बड़ी स्थिति प्राप्त कर लें, लेकिन यदि ये श्रद्धा जो है, जो हमारे जीवन की हर कठिनाई से आनंदमय स्थिति में हमें ले जाती है, भले ही जो भौतिक वस्तु है, धन है, वो कभी भी हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकता। समय ऐसा आता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे सकता और हम विवश हो जाते। केवल ये मंत्र जो है वो हर समय, हर क्षण हमारी सहायता करता है। जहाँ पर श्रद्धा है वहां पर कोई दुख नहीं है। इस पूरी सृष्टि में श्रद्धा से बढ़कर और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। तो वास्तव में हमें ये समझना चाहिए कि ये श्रद्धा किसको प्राप्त होती है। ये श्रद्धा हर व्यक्ति जो कि विनम्रता पूर्वक महात्माओं से श्रवण करता है, भगवान के विषय में, भगवान के पवित्र नाम के विषय में, पवित्र महामंत्र के विषय में जब हम श्रवण करते हैं तो हमें उसके अंदर श्रद्धा होती, उत्पन्न होती। वैसे हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा है, लेकिन क्योंकि जब हम पवित्र भक्तों से सुनते हैं तो वो श्रद्धा और भी ज्यादा तीव्र होती है हर क्षण, क्योंकि माया का हर क्षण आक्रमण होता रहता है। इसलिए ये जो श्रद्धा है वो उसके ऊपर है ना धूल चढ़ जाती है। और जैसे जैसे हम पवित्र शब्दों का श्रवण करते हैं भक्तों के मुख से, और हम महामंत्र की महिमा को श्रवण करते हैं, तो फिर वो श्रद्धा बहुत ज्यादा पक्की हो जाती है। महात्मा और शुद्ध भक्तों के जो वचन होते हैं वो हमारे हृदय में इस अनंत श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं, जो हमारी आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। आत्मा को वास्तव में, आत्मा जो है वो भगवान और भगवान के पवित्र नाम में पूर्ण श्रद्धा रखती है, लेकिन क्योंकि हम भौतिक जगत में आ गए हैं, इस जगत में माया के कारण, तीनों गुणों के कारण हम उस अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे भक्तों के पवित्र, शुद्ध भक्तों के पवित्र वचनों को श्रवण करते हैं तो हमारी श्रद्धा जो है पुनर्निर्माण होती है। इसीलिए इस बात पर बार बार जोर दिया जाता है कि मानव का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए। और इस तरह से भक्तों का संग करेंगे तो फिर हमें वास्तविक उद्देश्य यानी जो मंत्र है, भगवान है, उनके अंदर हमारी श्रद्धा। वरना तो देखो, ये वही मार्बल का एक मार्बल का पीस होता है, उसको तराश कर उसमें भगवान की विग्रह बनाई जाती है ना, होता तो वही पत्थर। पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती है, पत्थर कभी भी पूजनीय नहीं होता है, लेकिन वो इसलिए पूजनीय है क्योंकि उसको मंत्रों के द्वारा उसके अंदर प्राण प्रतीक्षा की गई है। उसी तरह जिस तरह से ये तीर बिल्कुल साधारण है, लेकिन उसको जब मंत्र उसके ऊपर पड़े तो वो ब्रह्मास्त्र बन गया, तो वही ये ये भी वही साधारण पत्थर है, लेकिन जब मंत्र के इसके साथ मंत्र से शुद्ध वैष्णव जो है इनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इसमें भगवान को आमंत्रित करते हैं, तो भगवान साक्षात इसके अंदर पधारते हैं। हम जब सुबह स्नान करते हैं उस समय साधारण नल का पानी होता है, कोई बोलेगा कि ये तो साधारण नल का पानी है, लेकिन जब हम मंत्र के द्वारा उसको अभिभूत करते हैं और कहते हैं गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, अब जितनी आपके अंदर श्रद्धा है उतना ही वो जो जल, भले साधारण नलके का जल होता है, साधारण हमारे वॉशरूम में टैंक लगा हुआ उसका पानी, लेकिन यदि हमारी श्रद्धा है तो केवल यह मंत्र उसे गंगा जल में परिवर्तित कर सकता है। मंत्रों के अंदर बहुत पावर होता है, शक्ति बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वह शक्ति तभी उसके अंदर उत्पन्न होती है जब हमारी हमारी जो श्रद्धा होती है वो बिल्कुल दृढ़ हो, पूरा विश्वास हो। इतने महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास कहीं सुदृढ़ निश्चय, कि पूरा विश्वास होना चाहिए कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है। जब तक आपके अंदर यह श्रद्धा नहीं होती कि आप भगवान के जो पवित्र नाम का जप कर रहे हो, भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हो, यह इसी से आपके जीवन का कल्याण होगा। ये यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर समझो संसार के अंदर और कोई श्रद्धा नहीं, इसके अतिरिक्त केवल यही श्रद्धा है कि भगवान और भगवान के पवित्र नाम। श्रद्धा का मतलब ये होता है वास्तव में जो सत्य है उसके ऊपर विश्वास करना, और सत्य एक हो कृष्ण सत्य। तो भगवान के नाम और भगवान की लीलाओं में श्रद्धा यदि हम उत्पन्न करेंगे, तो जब हम सच्चे महात्माओं से श्रवण करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, तो हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। कृष्ण प्रेम हरि नाम संकीर्तन से हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, और यही हमारी आत्मा की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। हम अभी हम सब से ये हृदय में इच्छा होती है, जब भक्तजनों के मुख से सुनते हैं तो हमारा दिल कितना करता है कि हम भी पवित्र नाम में इतनी श्रद्धा बढ़ाएंगे। तो ये श्रवण बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें कंटिन्यूअस भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में रहकर भगवान की महिमा को श्रवण करना चाहिए, ताकि हमारी श्रद्धा जो है वो तीव्र हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा प्राप्त होगी ना समझो उसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जिसको अभी श्रद्धा है, हम मानते हैं ठीक है श्रद्धा है, तो भगवान आगे कहते हैं कि तस्मात संयति इंद्रिय, की श्रद्धा है तो आपको क्या करना है, अपनी इंद्रियों को संयमित करना है। इंद्रियों को भगवान बताते हैं कि इंद्रियों को यदि हम खुली छूट दे देंगे जो करना है करो, तो भगवान बता रहे हैं कि नैवासौ वेद संहारम। ये द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन वो फिर भी नैवासौ वेद संहार, इसे संहार करना तो आता ही नहीं है, उसे लौटाना तो आता ही नहीं है, उसने चलाया क्यों, प्राण बाध उपस्थित, क्योंकि उसने देखा कि मेरे प्राणों पे संकट आ गया है, भय हो गया था उसको कि अब तो मैं उसे मृत्यु का भय हो जाता है। यहाँ पर भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब जीव को मृत्यु का भय होता है ना, तब वो सिर्फ वही कार्य कर सकता है जिसके ऊपर उसकी पूरी श्रद्धा है, कि इसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, ये मेरी रक्षा करेगा, तो वही कार्य करता है। तो यदि जीवन भर हम यही महामंत्र के ऊपर विश्वास रख के उसको जपते रहेंगे, उसका जप करते रहेंगे, भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण करते रहेंगे, साधु पुरुषों का संग करते रहेंगे, तो मृत्यु के समय भी हमें वही याद आएगा, क्योंकि जीवन भर श्रद्धा इसी पे रखी ना, क्योंकि मृत्यु को आया देखकर जीव भयभीत हो जाता है, और इतना भयभीत हो जाता है कि उसका व्यवहार जो है वो ऐसा हो जाता है कि जो उसने पूरी जिंदगी किया होता है ना, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया होता है, जिससे प्रेम किया होता है, जिसको याद किया होता है, उस समय वो वही चीज याद आने वाली है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना लेने से ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं, अंतकाले क्षमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो फिर पूरी जिंदगी नाम लेने की क्या जरूरत है, अंत समय में ले लेंगे, लेकिन वास्तव में अंत समय में वो याद नहीं आएगा, सिर्फ वही याद आएगा जो कि पूरी जिंदगी याद किया है। तो वास्तव में यदि हम पूरी जिंदगी कि भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हुए भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे तो ही हम मृत्यु के समय उसका उपयोग कर सकेंगे। तो इस तरह अर्जुन जो अश्वत्थामा था वो भी अर्जुन के भय से भयभीत था कि अभी वो मेरी मृत्यु है, और मृत्यु के भय से उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने एक सुंदर बात बताई तात्पर्य में कि ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे ऐसी त्रुटि नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि आप जिस स्टेज पर हो आपको उसके अनुसार ही कार्य करना होता है। ब्राह्मण था वो, उसको ऐसा कार्य नहीं, वो गलती पे गलती कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन इन सब के अपराध जो होते हैं, भले ही सेम भी अपराध हो, लेकिन अगर वो अलग वर्ण ने अलग आश्रम ने किया होता है, हाँ ब्राह्मण ने किया होता तो उसकी अलग सजा होती है, क्षत्रिय ने किया होता है उसका अलग होता है, वैश्य ने किया होता है या शूद्र ने किया होता है। एक बारी क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज की सभा में जब है ना परीक्षा ली जा रही थी कि कौन युवराज बनता है, तो फिर परीक्षा लेने के टाइम पर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों से हम देखते हैं कि कौन सही निर्णय करता है। तो ना चार व्यक्तियों को बुलाया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और इन पर ये आरोप था कि उन्होंने किसी की हत्या की है। तो पहले दुर्योधन से पूछा गया कि आप इनका न्याय कैसे करोगे, आप बताइए अगर इन्होंने हत्या की है तो न्याय कैसे करो। तो दुर्योधन ने कहा हत्या की, हत्या का मतलब है उनकी भी हत्या कर देनी चाहिए, प्राण दंड, प्राण नाश करने वाले को प्राण दंड देना चाहिए, तो इन सब की एक ही सजा होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हर किसी को अलग अलग सजा दूंगा, जाहिर सी बात है उनका अपराध एक ही जैसा है तो उनको सजा भी एक जैसी मिलनी चाहिए। लेकिन वही बात जब युधिष्ठिर से पूछी गई कि बड़े भैया आप क्या सजा इनके लिए निर्णय क्या लोगे, तो फिर युधिष्ठिर ने बताया कि मैं शूद्र को 5 साल, वैश्य को 10 साल, क्षत्रिय को 15 साल और ब्राह्मण को मृत्यु दंड दूंगा। तो यहाँ पर दुर्योधन कहता है इतना अनजस्टिस, एक ही अपराध की एक ही जैसी सजा होनी चाहिए ना। लेकिन फिर युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बोलते हैं कि क्योंकि शूद्र को कोई ज्ञान नहीं था, उसकी स्थिति ऐसी थी, एक तो वो इतना मतलब उसकी स्टेज ऐसी थी कि उसको पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने अपराध उससे हो गया तो वो अज्ञानी है। समझो अज्ञानी को अगर पता नहीं होता है, कोई फैसिलिटीज उसके पास नहीं होती है, तो अगर वो अपराध करता है तो उसको कम दंड मिलता है। लेकिन क्योंकि वैश्य जो होता है उससे ज्यादा ज्ञानी होता है, उसको शूद्र के कंपैरिजन में उसको ज्यादा ज्ञान होता है तो उसको ज्यादा अपराध लगता है। उसी तरह क्षत्रिय को और ज्यादा ज्ञान होता है, लेकिन ब्राह्मण तो ऐसा है जो सबको ज्ञान देता है, वो अगर किसी की हत्या करता है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर वो दूसरों को भी ऐसा ही सिखाएगा, खुद ही नहीं आचरण सही करेगा तो दूसरों को भी ऐसा ही सिखाएगा। तो इसलिए हर एक व्यक्ति जिसको ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं उसके ऊपर ज्यादा तवक्को की जाती है, उससे एक्सेप्टेशन भी ज्यादा की जाती है। और हमारे ऊपर अगर देखा जाए तो भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, हमें गुरु दिए हैं, हम सब दीक्षित हैं, गुरु महाराज का सानिध्य है, शास्त्र मिला है, हम रोज श्रवण करते हैं, भक्तों का संग प्राप्त होता है, डीटी वर्शिप करते हैं, और यदि हम अपराध कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी पनिशमेंट भी ज्यादा होगी। तो हमारे जितनी ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं उतनी ज्यादा उसके ऊपर एक्सेप्टेशंस भी की जाती हैं। तो फिर यहाँ पर बताया जा रहा है, भगवान श्री प्रभुपाद जी बताए ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे ऐसी त्रुटि नहीं करनी चाहिए थी, और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे भगवान द्वारा दंडित होना था। यहाँ पर एक बात और बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि अगर हम कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं तो हमें दंडित होना पड़ता है, यानी कि हर सूरत में हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना होता है, कि हम जो हैं उस टाइम पर हमारी जो स्थिति है उसके अनुसार जो कर्तव्य है उसे पूरा करना, अन्यथा हम भगवान के द्वारा दंडित होंगे। भले ही संसार में भौतिक कानून हम से बच भी जाएं, लेकिन भगवान के कानून से कभी नहीं बचते हैं, तो भगवान के द्वारा हमें अवश्य दंडित होना पड़ता है। श्लोक नंबर 28, अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्रतेज उन्नत्थम् अस्त्र त्रज्यो ह्यस्त्रतेजसा न ह्यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्रतेज उन्नतम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा न ह्यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्रतेज उन्नतम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा न ह्यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्रतेज उन्नतम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा न ह्यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्रतेज उन्नतम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा। शब्दों का अर्थ न ही अस्य न मतलब नहीं ही मन निश्चय ही अस्य इसका अन्यतमम अन्य किंचित कुछ भी अस्त्रम हथियार प्रति विपरीत वकर्षणम अर्थात प्रतिक्रिया करने वाला जही शमन करो अस्त्र तेज इस हथियार का प्रकाश अर्थात उन्नतम उन्नतम अर्थात अत्यंत ही शक्तिशाली अस्त्रज्ञ यानी सैन्य विज्ञान में पटु ही निश्चय ही से अस्त्र तेजसा तुम्हारे हथियार के प्रभाव से। अनुवाद हे अर्जुन अन्य ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र की ज्वाला को शमन करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है कि जिस तरह आजकल के जो एटमी बम होते हैं उनको ऐसा नहीं है कि कोई उसको चला रहा है तो उसको किसी और बम चला के उसको रोका जा सके ऐसा नहीं है। लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमन किया जा सकता है और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पट्टू थे वे ब्रह्मास्त्र को शमन कर सकते थे। द्रोण पुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। यानी भगवान अब आदेश दे रहे हैं अर्जुन को क्या कह रहे हैं न ह्यस्यान्यतमं कंचित इसके अतिरिक्त तो और कोई है ही नहीं। एक ब्रह्मास्त्र का शमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा अस्त्रम प्रत्यवकर्षणम के उसी ब्रह्मास्त्र का वापस से प्रतिक्रिया में भी आपको वैसा ही अस्त्र चलाना पड़ेगा। जिस जो अस्त्र ब्रह्मास्त्र चलाया है उसको शमन करने के लिए आपको दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। जयस्त्र तेज उन्नतम अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो जो इस ब्रह्मास्त्र को देखकर डर रहे हो। तुमने ये पूरा सैन्य विज्ञान जानते हो तुम्हें सब कुछ पता है तुम बहुत ज्यादा उन्नत हो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो और अस्त्रज्ञ सारे अस्त्रों के विज्ञान को तुम जानते हो। क्यों तुम परेशान हो रहे हो कि क्या आ रहा है यहाँ पर अभी तुमको क्या करना है अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र की ज्वाला को शमन करो। भगवान कहते हैं कि अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा तुम अपने अस्त्र की शक्ति से इस जो परमाणु ये जो बहुत ज्यादा भयानक अग्नि आ रही है उससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ आता है कि किस तरह से इसको शमन करना है तुम्हें पता है कि इसको खत्म करने के लिए तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा और तुम इस तरह से करो क्योंकि अब इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं क्योंकि ब्रह्मास्त्र को इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा हथियार शमन कर ही नहीं सकता। तो देखा जाए तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के सारथी हैं, लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत स्टार्ट करने से पहले श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को श्रवण कराई थी, और अर्जुन को जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था 11वें अध्याय में, तब अर्जुन ने भगवान से कहा था, कृष्ण आप मेरे मित्र हो, मैं आपको हमेशा अपना मित्र समझता था और आपकी हमेशा बेअद भी करता था, आपको कभी मित्र बोलता था, कभी बंधु बोलता था, कभी आपके ऐसे कंधे पर हाथ मार के मारता था, कभी हे कृष्ण हे यादव हे सखी थी इस तरह से पुकारता था, परंतु मैं जो भी करता था मैं सिर्फ प्रेम में करता था। तो लेकिन अभी मैं तुम्हें जान गया हूँ कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम साक्षात परम पुरुष भगवान हो। और भगवान को अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवम पुरुष शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। तुम परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, आदि पुरुष हो और साक्षात भगवान हो। तो अर्जुन क्योंकि जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण जो उसके सामने खड़े हैं एक मित्र या सारथी के रूप में, तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और अर्जुन भगवान भी जानते थे कि अर्जुन अभी उनकी महिमा को जानते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि अब इस ब्रह्मास्त्र को लौटाने के लिए या इसको शमन करने के लिए आप भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो। इतना कहने के बाद सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम् फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्रामं ब्रामं ममस्त्र ब्रामास्त्र सौन्दति श्रुत्वा भगवतां प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य भ्रामं भ्रामास्त्र सौन्दरे श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य भ्रामं भ्रामास्त्र सौन्दरे श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य भ्रामं भ्रामास्त्र सौन्दरे श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य भ्रामं भ्रामास्त्र सौन्दरे श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य भ्रामं भ्रामास्त्र सौन्दरे। शब्दों का अर्थ सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी जो कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को वेट कर ये सब बता रहे हैं, क्योंकि उनका प्रश्न था कि परीक्षित महाराज के विषय में वो जानना चाहते थे। तो अभी क्योंकि परीक्षित महाराज की कथा आएगी तो ये स्टार्ट से बता रहे थे। सूत गोस्वामी उन ऋषियों को कहते हैं, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम, श्रुत्वा अर्थात सुनकर भगवता भगवान द्वारा प्रोक्तम जो कहा गया। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने अर्जुन को कहा, नह्यस्यान्यतमं किंचित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्रतेज उन्नतम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा, कि क्योंकि अन्य कोई भी अस्त्र ब्रह्मास्त्र को क्षमा नहीं कर सकता है, और क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ विधि है, तुम्हें सब ज्ञान पता है, विज्ञान में तुम बहुत ज्यादा पटु हो, तो इसलिए तुम उसी अपने ब्रह्मास्त्र की शक्ति से इस अस्त्र की ज्वाला को शमन करो। जब भगवान ने इस तरह के शब्द कहे, प्रोक्त प्रोक्त मतलब कहे, जो भगवान ने कहे उनको जब श्रुत्वा उन्होंने सुना, तो फल्गु परवीरः, फल्गु का मतलब होता है अर्जुन का अन्य नाम, फाल्गु अर्जुन का एक नाम है, फाल्गु जिसको बोलते हैं, परवीरः यानी विपक्षी योद्धा का वध करने वाला, ये ऐसा अर्जुन है जो कि कभी भी पराजित नहीं होता है, जिसके साथ भी युद्ध होता है तो हमेशा उसको वध करके, शत्रु का वध करके ही आगे बढ़ता है। परवीरः यानी दूसरे विपक्षी का हमेशा वध करता है, उसको फाल्गुनः कहते हैं, फाल्गुनः, हाँ सॉरी फाल्गुनः। और पृष्ठवा पास्तम परिक्रम्य, पृष्ठवा यानी स्पर्श करके आप यानी जल, तम यानी उसको परिक्रम्य परिक्रमा लगाकर। अभी क्योंकि अर्जुन भगवान, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि भगवान को, भगवान के अंदर, भगवान कृष्ण में उनकी अटूट श्रद्धा थी, तो वो भगवान ने जैसे ही बोला कि तुम अपने अस्त्र का प्रयोग करो और इस ब्रह्मास्त्र का शमन करो, तो उसने पहले क्या किया, स्पर्शम आपह, सबसे पहले जल को स्पर्श किया, यानी कि विधि बता रहे हैं। अभी संकट आ गया है प्राणों का, लेकिन फिर भी पूरी विधि के साथ पहले आचमन करते हैं और परिक्रमा, भगवान की परिक्रमा करते हैं, ब्राह्मण यानी परब्रह्म को, भगवान को, और ब्राह्मण अस्त्रम यानी परम अस्त्र को संदधे, छोड़ना, और इस तरह से वो क्या करते हैं, उस अस्त्र को छोड़ते हैं। अनुवाद, श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उसने उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। यानी कि भगवान ने जो कह दिया वही अंतिम निर्णय है, कि भगवान ने बस बोल दिया है कि अभी इसको शमन करने के लिए आपको यह ब्रह्मास्त्र की विधि, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ना है, तो अर्जुन ने उसका उपयोग किया। यानी कि भगवान के शब्दों में उसकी पूरी श्रद्धा थी कि भगवान ने जो कह दिया उसी से मेरा कल्याण होगा। हमारे ऊपर भी भगवान ने बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे लिए उपदेश दिए, आदेश दिए। भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मास्सच। भगवान कहते हैं तुम अपने अन्य समस्त धर्मों को परित्यज, त्याग दो और एक अकेले मेरी शरण में आ जाओ। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब है भगवान के ऊपर हमारी पूरी श्रद्धा नहीं है, भगवान में हमारा पूरा विश्वास नहीं है, भगवान के शब्द ही मेरा कल्याण करेंगे, वो हमने अभी तक ऐसा, कोई कोई लोग हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, इस भगवान कृष्ण की भी भक्ति करनी चाहिए, दूसरों की भी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने कहाँ कहा है कि मेरे अतिरिक्त माम एकम, केवल मैं ही तुम्हारा कल्याण करूँगा, तुम्हारे समस्त अपराधों का नाश करूँगा। और यदि हम भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, भगवान की बात को नहीं मान रहे, इसका मतलब होता है कि ये शरणागति नहीं, शरणागति का मतलब होता है आपकी कोई इच्छा नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्य, और कोई अभिलाषा नहीं बचनी चाहिए, केवल कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण ने जो बोला है कि अहम त्वाम सर्व पापे भी हो, वो केवल अपने बारे में बोला है, ये नहीं कहा है कि किसी और की शरण में जाओगे तो भी तुम्हारे पापों को मैं नष्ट करूंगा। माम एकम, यदि तुम समस्त धर्मों को त्याग करके मेरी अकेली की शरण में आ जाओगे तो बाकी जितने भी अपराध हैं वो मैं तुम्हारे क्षमा कर दूंगा। शरण में आने का मतलब होता है इच्छाओं का परित्याग, यानी कि जब हम सरेंडर करते हैं इसका मतलब होता है जिसको हमने सरेंडर किया है अब मुझे उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना है। अगर हम सरेंडर होने के बाद भी अपनी इच्छा रखते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब है हमें पता ही नहीं है शरणागति का वास्तविक मतलब क्या है। तो अर्जुन उसी शरणागति का प्रदर्शन करते हुए, जैसे ही उसने सुना कि भगवान चाहते हैं कि मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं, तो उसने आचमन किया पर भगवान की परिक्रमा की और अपने उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, ब्रह्मास्त्र को उस ब्रह्मास्त्र का शमन करने के लिए छोड़ा। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। अभी ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएं या क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, कृपया साथ रहिएगा। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी साधना में दृढ़ हो सकूं। मेरे लिए कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।